संबंध। पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। व्याख्या। संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिःकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा कि सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोग की इतनी समता और निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाएगी, तदा योगम अवाप्स्यसि। योगस्थ कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थिति रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते, ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थिति रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे पांचवें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे, दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही है। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है, ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और संसार के संबंध से होने वाला दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित तो होना कहे, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहे, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं, ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायात्मिका और व्यवसायात्मिका, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है वह बुद्धि अव्यवसायात्मिका होती है। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, जिसमें समता की प्राप्ति करने का अपना कल्याण करने का उद्देश्य रहता है वह बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायात्मिका होती है वो स्वयं अव्यवसायी होता है। बुद्धयो अव्यवसायिनाम, तथा वह संसारी होता है, और जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी अर्थात व्यवसित होता है। व्यवसितो ही स, नवे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, वह साधक होता है। समता भी दो प्रकार की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतकरण की होती है, साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में पदा योगम अवापसी पदों से हुआ है। अब इन चारों वेदों को यूं समझे कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है, उसकी एक व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं। मुझे तो समता की प्राप्ति ही करनी है चाहे जो कुछ हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि लाभ हानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उड़ जाता है। यही वतैर जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मन, साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता। परिशिष्ट भाव, पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। इस प्रकार पातंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है। समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तात्पर्य यह है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग यानी वित्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। यह निर्विकल्प बोध ही सहजावस्था है, निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है। प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सहविकल्प दोनों ही होती हैं, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पातंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण है। पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूड और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है। परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सबके सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता अध्याय 6 44वां श्लोक।